मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 18 जून 2018 है और आज के इस afias.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। दोस्तों, आज सप्ताह का पहला दिन है, सोमवार, और सोमवार को हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जहां तक संभव हो सके किसी के जीवन को लेकर के चर्चा की जाए या उसके जीवन के अंश को सीधे सीधे आपको सुनाया जाए। और सुनाने को महत्व मैं थोड़ा सा इस बारे में ज्यादा देता हूं कि उससे आपको एक फ्रीडम रहती है कि आप उस अंश को सुने और सुनने के बाद फिर अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से उससे अपने लिए निष्कर्ष निकालें। तो इसमें आपकी फ्रीडम प्रोटेक्टेड रहती है, मतलब जो आपकी स्वतंत्रता है, सोचने की स्वतंत्रता, मुझे लगता है कि उसकी बहुत अच्छे तरीके से रक्षा हो पाती है। लेकिन बीच बीच में हम लोग इसमें बदलाव करते रहेंगे। आज मेरा मन हुआ कि मैं आपको एक अंश और पढ़कर सुनाता हूं। मुझे याद है कि पिछली बार भी मैंने आपको एक अंश सुनाया था और मुझे अच्छी बात यह लगी कि उस अंश से जो आप लोगों ने अपने अपने लिए मैसेज निकाले वो बड़े प्रभावशाली थे। अलग अलग किस्म के मैसेज आप लोगों ने ग्रहण किए, तो सच पूछिए तो उसी ने फिर मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि नहीं, बजाय इसके कि मैं अपनी बात आपके सामने सीधे सीधे रखूं, बेहतर होगा कि मैं आपके सामने एक ऐसी बात रखूं कि उसमें से आप अपने अपने लिए बातें निकाल सकें। तो इसी सोच के तहत मित्रों, मैं आज फिर से आपको एक छोटा सा अंश सुना रहा हूं और यह अंश सुकरात के जीवन से संबंधित अंश है। सुकरात, जिन्हें सोक्रेट्स कहा जाता है, यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं, आपने नाम जरूर सुना होगा। और ये आज से लगभग आप यूं कह लीजिए कि 2400 साल पहले के दार्शनिक हैं, मतलब यूं कह लीजिए कि हमारे यहां जब गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी हुए हैं उससे बस थोड़े से बाद के दार्शनिक सुकरात, राइट। सुकरात के बारे में शायद आप लोगों ने कुछ चीजें मालूम कर रखी हों, और कुल मिलाकर के है कि सुकरात पर आरोप लगाया गया था, और मेरी समझ से आगे मुझे अपनी बात नहीं बतानी चाहिए। आइए इस अंश में ही देखते हैं। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं कि सुकरात पर ये आरोप लगाए गए कि वह अधार्मिक है और नगर देवताओं की अपेक्षा अन्य नए देवताओं के विषय में बात करता है और नवयुवकों में भ्रष्टाचार फैला रहा है। इन अभियोगों के आधार पर 220 के विरुद्ध 280 मतों द्वारा उसे मृत्युदंड दिया गया, मतलब मृत्युदंड दिया गया। और इस आरोप में कि ये नए नए देवता की बात करता है और हमारे जो नवयुवक हैं उनको भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित कर रहा है, उकसा रहा है, राइट। मृत्युदंड से पूर्व देश छोड़कर जाने का विकल्प भी उसके सामने रखा गया, जिसे अस्वीकार करते हुए सुकरात ने कहा कि यदि आप लोग मुझे इस शर्त पर मुक्त करना चाहते हो कि मैं सत्यान्वेषण का त्याग कर दूं, तो मैं यह कहूंगा कि एथेंस वासियों, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, परंतु मैं आपकी बात मानने की अपेक्षा दैवी आदेश का पालन करूंगा। मेरे विश्वास के अनुसार मुझे यह कार्य सौंपा गया है। मैं यहां थोड़ी सी बात आपको बता दूं, जो एथेंस है वो उस समय नगर राज्य हुआ करता था जिसे हम आज यूनान की राजधानी कहते हैं एथेंस, तो उसे ही कहा उन्होंने एथेंस वासियों। और जब सुकरात का जो पीरियड रहा है उस समय एथेंस कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, कहा जाता है कि लगभग 5-6 हजार की ही आबादी एथेंस की थी, छोटा सा, और स्टेट मतलब नगर राज्य इसको कहा जाता है, सिटी स्टेट जिसे आप कह लीजिए। अब आगे आइए सुनिए, जब तक मुझ में श्वास है कि मैं दार्शनिक जब तक मुझ में श्वास है मैं दार्शनिक चर्चा का त्याग नहीं करूंगा। मैं अपना कार्य करते हुए प्रत्येक व्यक्ति से यह पूछूंगा कि क्या तुम्हें इसमें लज्जा नहीं लगती कि तुम्हारा ध्यान धन और मान की प्राप्ति की ओर लगा हुआ है? सत्य तथा ज्ञान की अथवा अपनी आत्मा के विकास की तुम्हें कोई चिंता नहीं? मैं नहीं जानता कि मृत्यु क्या है, संभवतः वह अच्छी वस्तु हो, मैं उससे भयभीत नहीं, लेकिन मैं यह भली भांति जानता हूं कि अपनी कर्म भूमि का त्याग करके जाना एक बहुत घृणित कार्य है। इस कारण मैं जिस वस्तु को निश्चित रूप से घृणित मानता हूं उससे उस वस्तु को श्रेष्ठ समझता हूं जो मुझे अच्छी प्रतीत होती है। इस अस्वीकृति के पश्चात जब फिर से मतदान हुआ तो और भी अधिक सदस्य उसको मृत्युदंड देने के पक्ष में हो गए। एथेंस के विधान के अनुसार मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को 24 घंटे के अंदर ही विस्पान करा दिया जाता था, परंतु कुछ धार्मिक बाधाओं के कारण सुकरात को एक माह तक बंदी गृह में रखा गया। बंदी गृह में सुकरात ने यह समय अपूर्व धैर्य से व्यतीत किया। क्रीटो द्वारा उसके भागने की योजना को सुकरात ने स्वीकार नहीं किया और बहुत ही शांतिपूर्वक विस्पान किया। अपनी पार्थिव देह के त्याग तक वे अपने प्रशंसकों, जिनसे कि वह घिरा हुआ होता था, को विभिन्न उपदेश देता रहा। मरते समय उसने कहा कि मैंने लोगों को सिखाया है कि जीना कैसे चाहिए और अब मैं लोगों को यह बता रहा हूं कि मरना कैसे चाहिए। मैं तो ये छोटा सा अंश है जो चूंकि एक ही घटना से संबंधित है, तो मैं अपनी बात इसी घटना यहीं पर आकर समाप्त करता हूं। तो रात के जो शिष्य हुए थे वे हुए थे प्लेटो, और खासकर सुकरात की इस घटना को देख करके प्लेटो बहुत विचलित हो गए थे, और सच पूछे तो प्लेटो की इसके बाद से राजनीति से बिल्कुल विश्वास ही हट गया था, या यूं कह लीजिए कि राजनीति से एक प्रकार से घृणा हो गई थी, और उन्होंने फिर राजनीति वाजनीति को छोड़ करके और अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि मैं सुकरात के विचारों का प्रचार प्रसार करूंगा। ये उनका उद्देश्य हो गया, और सच पूछे तो प्लेटो ने ही सुकरात के जितने भी विचार हैं उन सबको संग्रहित किया, उन पर चीजें लिखी, और ये भी कहा जाता है कि एक प्रकार से सुकरात की हत्या ने ही फिर से दुनिया को एक भावी दार्शनिक दिया जिसका नाम था प्लेटो, और प्लेटो के फिर शिष्य हुए थे फिर से एक दार्शनिक परंपरा देखिए जिनका नाम है अरस्तु। अरस्तु के भी एक बहुत महान शिष्य हुए जो दार्शनिक तो नहीं हुए लेकिन शासक हुए, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्हें आप सिकंदर के नाम से जानते हैं। तो ये सुकरात से सिकंदर तक की शिष्य गुरु शिष्य परंपरा है। खैर मित्रों, तो ये अंश मैंने आपके सामने रखा। इसकी आपको सबसे खूबसूरत बात देखिए जो लगी होगी, मुझे लगता है कि अगर हो सकता है कि पहली बार आपने सुना है तो न भी लगी हो, इसे फिर से सुनिए। थोड़ी सी चीजों पर ज्यादा ध्यान लगाइए, बजाय कि ज्यादा चीजों पर हम थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाएं, और फिर आप पाएंगे कि इसमें कितनी गजब की तार्किकता है, लॉजिकल कितना ज्यादा है ये अंश पूरा का पूरा। आपको एक एक लाइन में और ऊपर से नीचे की लाइन में तार्किकता का एक द्वंद्व दिखाई देगा कि सुकरात किस तरीके से अपनी बात को बहुत ही तार्किक तरीके से रख रहे हैं, और दूसरा तथ्य यह कि कितने आत्मविश्वास के साथ रख रहे हैं, कितनी दृढ़ता के साथ रख रहे हैं। मतलब उनके शब्द में आवाज तो उनके रिकॉर्डेड हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिस तरह की सुकरात की यहां भाषा है, डेफिनेटली जब वो बोल रहे होंगे तो उनकी आवाज में भी उतनी ही दृढ़ता रही होगी, कोई कंपन नहीं रहा होगा, मौत का कोई खौफ उनकी आवाज में कंपन पैदा नहीं कर सका होगा, क्योंकि उन्हें मौत का कोई खौफ ही नहीं था। जो आदमी कह रहा हो जिसे विस्पान करना है, सोच के देखिए, और विस्पान करने के बाद आदमी को बड़ी वो होती है, शुरू की स्थिति मानसिकता को सोचिए, और विस्पान करने के बाद भी आप अगर थोड़ी देर जीवित रहते हैं तो सोच करके देखिए कि उसको लग रहा है कि अब तो मैं क्रमशः मर रहा हूं, और उस मानसिकता में वो व्यक्ति इतनी तार्किकता के साथ बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि अभी तक मैंने ये सिखाया है कि जीना कैसे चाहिए और अब मरकर, यानी कि प्रैक्टिकली ये सिखा रहा हूं मरना कैसे चाहिए, सत्य के लिए मरना चाहिए, अपने विचारों के लिए मरना चाहिए, अपने सिद्धांतों के लिए मरना चाहिए, यही तो वो सिखा रहे हैं। तो मित्रों, ये बहुत ही गजब का अंश है सुकरात के ऊपर पूरी एक किताब है जिसमें पूरा का पूरा विवरण है कि जब वो एक महीने तक बंदी गृह में रहे तो अपने शिष्यों से वो क्या बातचीत करते रहते थे, उसकी भी पूरी फिलॉसफी हमारे मतलब अब ये दुनिया के पास है, ये दुनिया का सौभाग्य है। तो मित्रों, ये छोटा सा अंश मैंने आपको पढ़कर सुनाया है, आप सब इसे सुने और अपने अपने ढंग से इसे एंजॉय भी करें और अपने लिए तथ्य भी निकालें। तो अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।